जी के पास में एकत्रित हुए और गुरु महाराज जी उन लोगों के साथ में हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। हरिहरे नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जय राधे जय कृष्ण, श्री रूप मंजरी पद। और क्या वो क्या है, नरोत्तम ठाकुर का है। हाँ, हरिहरि कविमर होइबे सुदी, ललिता विशाखा बार करुणा होइबे, ये सब हम लोग कर रहे थे। विशेष करके जब हरे कृष्ण करने लगे तो गुरु महाराज भी हरे कृष्ण कुछ बार करने के बाद में अंतिम हरे कृष्ण इसके बाद में बस। उस समय ठीक संध्या का समय आरती होने जा रही थी, हम लोगों ने आरती भी बंद नहीं किया। ठाकुर जी का माला इधर में गिरा गले से और अपने नित्य धाम में वो प्रवेश कर गए। सारी रात सब वैष्णव लोग जग करके सिद्धांती महाराज पूज्य पाद आए, हम लोग सब समाधि की व्यवस्था की। सवेरे 5 बज गया, समाधि संपन्न हुई, घर में आरती आरंभ हुई। उस समय रात भर तो अपनी उष्मा को सब लोग छिपाए थे, सेवा में लगे हुए थे, किंतु आरती होने के साथ साथ में सभी लोग भाव विभोर हो गए। उस समय में करुणा की नदी बह पड़ी, आंखों से, मुख से, सभी लोग रोने लग गए। इस तरह से ऐसे शुभ तिथि में गुरु महाराज जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग जैसे तैसे भी एक जगह हैं और कुछ विचार भी हो रहा है। आजकल कली काल का दिन, कली नहीं चाहता जो शुद्ध भक्ति का प्रचार हो। वो बड़े सिंह विक्रम थे, उनके गुरु भाइयों ने उनको भी ये उपाधि दी थी, क्या पाषंड गजई का सिंह। उनके गुरु भाई थे वो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय। जैसे गुरु महाराज जी थे वो भी उन्होंने उपाधि दी थी। यदि प्रभुपाद के विरुद्ध, गौड़ीय संप्रदाय के विरुद्ध जिसने कलम उठाई उसकी कलम को उन्होंने तोड़ दिए, उनका मान अहंकार विद्या सब एकदम चूर्ण विचूर्ण कर दिया। बहुत ही सिद्धांतविद, वैदांतिक, रसिक वैष्णव थे। जब जब उनके सामने गौड़ीय वैष्णव पर कोई विपत्ति आई सबसे पहले वो रहते थे। प्रभुपाद जी के जाने के बाद में बहुत सी घोर विपत्तियां आई, किंतु सभी लोग इनकी छत्र छाया में, इनके गुरु भाई भी इनकी छत्र छाया में बिना इनके परामर्श लिए कुछ नहीं करते थे। सभी लोग इनसे परामर्श लिया करते थे, चाहे सिद्धांत का विषय हो, चाहे विषय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कंट्रोल करने का हो, सब विषयों में इनसे सब परामर्श लेकर के सब करते थे। इनको प्रभुपाद जी ने उपाधि दी थी कृति रत्न। कृति रत्न, कृति माने क्या, भक्ति ही कृति है, और कृति रत्न, कृतियों में रत्न क्या है, एक प्रेमा भक्ति। प्रभुपाद जी के एक समय में इनको एक विषय दिया कि परमानंद है, परमानंद प्रभुपाद जी के सब समय साथ में रहते थे, हमारे गुरु महाराज जी के साथ में सोते बैठते खाते पीते थे, दोनों एक ही उम्र के थे। अजय इनका गुण वर्णन कीजिए, बस प्रणाम मंत्र से वैदांतिक होने के नाते वेदांत की सभी चीज़ें, भागवत की बातें, ये सभी लेकर के बहुत ही सुंदर एक भाषण दिया। इसमें प्रणाम किया था परमानंद माधव, क्या श्लोक, मुखम करति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहम वंदे परमानंद। वो जो परमानंद जो माधव है उनकी जय दी, और इसके बाद में हो भाग्यम, हो भाग्यम नंद गोप जोक्षाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम आनंदमय अभ्यासात। एकदम वेदांत के सब सूत्र और श्रीमद्भागवत के मिलते जीते हुए श्लोकों के द्वारा 8 घंटा बहुत सुंदर विद्वतापूर्ण भाषण। प्रभुपाद जी प्रसन्न होकर के बोले, आज मुझको एक वैदांतिक शिष्य मिला, बस अपनी सारी वेदांत की पुस्तकें गुरु जी को दे दिया, ये तुम पढ़ना, इसका प्रचार करना, और नहीं देखते हैं जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका ये कर सके। गुरु महाराज इसीलिए गौड़ीय वेदांत समिति का, गौड़ीय वेदांत, गौड़ीय वेदांत क्या है, बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य में जो स्थापित किया, जो गोविंद की भक्ति, गोविंद ही वेदांत के प्रतिपाद्य विषय है, निर्विशेष ब्रह्म ने इसकी स्थापना की, और इसके लिए उन्होंने हम लोगों का नाम रखा भक्ति वेदांत बामन, भक्ति वेदांत विक्रम, भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत, अभी पहले 3 ही हम लोग थे, 3 ही हम लोगों को पहले संन्यास दिया, हम लोग लेने के लिए राजी नहीं, किंतु उनकी देने की इच्छा, अंत में हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो आप आत्मसमर्पण कर चुके हैं, आप चाहे लंगोटी में रखिए, ब्रह्मचारी वेश, गृहस्थ वेश, सन्यासी वेश, परमहंस वेश, जो आपकी इच्छा है उसको आप दे। इसके बाद में हम लोगों को सन्यास दिया, आज उन्हीं की कृपा है कि सभी लोग आदर करते हैं हमारी, हम लोगों की बातों को सभी लोग सुनते हैं, इसलिए गुरु के प्रति वैसे ही समर्पण होना चाहिए जैसा कि हम लोगों ने समर्पण किया था, उन्होंने अपने गुरु जी के प्रति अपने को आत्मसमर्पण किया था, उनका बल था गुरु निष्ठा, सभी लोग स्वीकार करते हैं, सभी लोग स्वीकार करते थे जबकि प्रभुपाद के सब गण थे उस समय में, पूज्यपाद भारती महाराज, पूज्यपाद वन महाराज, पूज्यपाद श्रीधर महाराज, पूज्यपाद माधव महाराज, पूज्यपाद गिरी महाराज, पूज्यपाद बई खानस महाराज, ये सब बड़े बड़े महारथी ये सब थे, ने पूज्यपाद नेमी महाराज, उन लोगों की तुलना में हम लोग कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे सिद्धांतविद, बड़ी बड़ी सभाओं में संस्कृत भाषा में या शुद्ध भाषा में, बंगला में या हिंदी में बोलने वाले, वहां पर अपने विचारों की प्रतिष्ठा करने वाले, ये सब लोग, सब लोग गुरु महाराज जी का आदर करते थे, यहाँ तक कि गुरु महाराज ने को प्रभुपाद जी ने 3 बार संन्यास देने के लिए कहा, किंतु व्यवस्थापक जो थे या और लोग थे, देखा जैसे ये संन्यास ले लेंगे तो व्यवस्था कौन करेगा, तब वो व्यवस्था में नहीं रहेंगे, मायापुर में रह करके उसकी को चलाना, उसकी व्यवस्था करना, प्रचार इत्यादि की व्यवस्था देखना, इसलिए उन लोगों ने 3 बार ही प्रभुपाद से कह सुन करके उनको रुकवा दिया कुछ दिन के लिए। तब प्रभुपाद जी के प्रकट होने पर प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा मिशन ध्वंस हो रहा है, तुम जल्दी से संन्यास लो। तब उन्होंने संन्यास लिया। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी से, श्रीधर महाराज उनसे जूनियर थे, बहुत पीछे, यहाँ तक कि पूज्यपाद बामन महाराज जी से भी पीछे आए हैं। बामन महाराज जी भी काव्य भूषुंडी महाराज हैं, बहुत पहले आए हुए हैं, बहुत गुरु वैष्णव की सेवा की है। तुम लोग को पत्ता देने में लज्जा आती है, उनका पत्ता देना, पत्ता परोसना, पत्ते को धो देना, फिर उसमें नमक देना, नींबू देना और पानी देना, उनका ये काम था। सब्जी अमान्य करा बचपन से ही, तरकारी अमान्य करा, उसमें श्रद्धा से लोग करते थे। वैष्णव आगे उनका आदर करना, और हम लोगों को ऊपर से बुलाना पड़ता, जाओ उनको बुला लाओ, तो पांच बार टेलीफोन करने पर भी आदमी भेजने का भी कोई यहाँ पर मिलता ही नहीं जब खुशी को बुलाए। कोई रहते हैं तो पीछे के घर में आराम के साथ में, पहले ऐसा नहीं। जहाँ घंटी बजी आरती की, सब लोग आतुर होकर के दौड़ते थे। हमने ये सब देखा था, आतुर होकर के। जहाँ प्रसाद की हुई सब लोग आ गए, सेवा की भावना उस समय थी। गुरु जी के समय में हमने देखा है कैसे सेवा होती है, कैसे भजन होता है, कैसे श्रद्धा होती है। तो मैं उनके वो बतला रहा था, श्रीधर महाराज जी से संन्यास लिया। श्रीधर महाराज उनसे जूनियर थे, पीछे आए हुए थे, किंतु वकालत पास करके कुछ दिन प्रैक्टिस करके आए थे। तो जिस समय आश्रम में आए मायापुर में, भाई बहुत सुंदर बन रहा है यहाँ आश्रम, और यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी यहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए आए। तो देखा ये एक छोटा सा लड़का उम्र में, गुरु महाराज जी से उम्र में श्रीधर महाराज जी बड़े थे, किंतु पीछे आए। तो जिस समय आए थे नवयुवक रूप में, उस समय गुरु महाराज जी की उम्र हार्डली से 20 वर्ष की हो, और उस समय उनकी उम्र 25-30 वर्ष की थी श्रीधर महाराज जी की। तो उस समय में वकील लोग जैसे रहते हैं, वकील उसी रूप में आए, देख रहे थे। देखा जाए एक छोटा सा लड़का चेयर पर बैठा है, पैर पर पैर ऐसे कर करके हिला रहा है, और एक छड़ी रखी हुई है बेल्ट की, बड़ी सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, शांतिपुरी धोती और पंजाबी पहने हुए हैं, और ऐसा जो आंख बंद करके एक कटहल के पेड़ के नीचे ऐसे कर रहा है। और देखा एक बहुत तगड़े लंबे चौड़े सन्यासी आकर के उनको प्रणाम किया, कुछ देर खड़े रहे, और वो चेयर और टेबल पर पैर रख करके और ऐसे करते हुए उनसे बातचीत कुछ किया, और फिर उनको वो सन्यासी प्रणाम करके गए। देखा ये कौन ऐसा ब्रह्मचारी है अभी, और उसको इतने लंबे चौड़े और इतना बड़े सन्यासी और उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये साधारण कोई आदमी नहीं मालूम पड़ता। लोगों से पूछा जाए ये ब्रह्मचारी जो वहाँ पर बैठे हैं ये कौन है, तो यहाँ के वही अभी मालिक समझिए प्रभुपाद के बाद में, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत तेजस्वी ये लड़का है। एक दिन में ही मुसलमानों का कब्रगाह मायापुर के रूप में एकदम बदल करके एकदम दिव्य ये बना दिया। सब लोग इसे थर-थर कांपते हैं, कोई भी परामर्श होता है इनसे लोग करते हैं, देखने में ऐसा है किंतु बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण और सिद्धांतविद है। फिर पीछे से प्रभुपाद के पास में गए, और इसके बाद में आकर्षित होकर के मठ में चले आए। बहुत ही शास्त्रीय तर्क वितर्क इत्यादि करते थे सिद्धम, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि। उनसे और कोई इस विषय पर सुनते थे, उनके विचारों को खंडन मंडन करना कोई नहीं करता था, किंतु गुरु महाराज जी से जब भेंट होती तो गुरु महाराज जी के साथ में वो जो कहते ही वो काट देते, और वो जो कहते इनको ये काट देते। एक समय हमें याद है गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग गए थे, गुरु महाराज सन्यासी थे और उनके पास में हम लोग गए थे, वर्ष में एक बार जाते थे सन्यास गुरु को सम्मान देने के लिए। तो वो गए थे, वही श्लोक था, कृष्णेति जस्य मनुष गिरिं तं मनुषाद्रियेत दीक्षास्त चेत भजन्तमीशं सुस्वया भजन विज्ञमनन्न सुन्न आनन्द मन्न निंदादि सुन्न हृदय में प्रति संगलब्धा कृष्णेति जस्य गिरिं मनुषां आद्रियेत। जो कृष्ण नाम जिसके जीवा पर एक बार है उसको मन ही मन आदर करो, क्या समझ कर हमारे गोष्ठी का है, विरोधी मत समझो, दीक्षा नहीं हुए कोई भी बात नहीं, उसको आदर करो। और चेत दीक्षास्ति, दीक्षा हुई है तो क्या करो, मन मन भी प्रणाम करो और साथ ही साथ में सष्टांग भी प्रणाम करो, उसका आदर करो। और यदि निंदादि शून्य होकर के किसी की निंदा वंदना नहीं करता है, वंदना करता है वैष्णव की भगवान की, ये सब निंदा तो किसी की भूल करके भी नहीं करता, किसी का दोष नहीं देखता, और संबंध ज्ञान से युक्त अनर्थ से रहित होकर के भगवान का नाम करता है, ऐसे वैष्णव को अत्यंत आदर के साथ में उसकी सेवा करो। और एक चतुर्थी इसमें और भी हो जाएगा, जो इसे ऊपर उठ करके अष्टकालीय लीला इत्यादि का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिनके देखने से ही कृष्ण नाम आता है, ऐसे महापुरुष को अपना हृदय समझ करके सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण करके भजन करो। रूप गोस्वामी ने लिखा, इस पर विचार हो रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ ऐसा देखने से पढ़ने से ऐसे मालूम होता है इसकी व्याख्या में, यदि कोई भी व्यक्ति हो किंतु एक बार मुख में कृष्णा माने से उसको आदर करो। अब प्रभुपाद ने चेत दीक्षास्ति को आगे लाया, जिसकी दीक्षा हो गई है, जिसका अनर्थ दूर हो गया है, अनर्थ पूर्ण रूप से नहीं, हाँ दूर होने लग गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अब कुछ हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो संबंध ज्ञान के साथ में गुरु से दीक्षा लेकर के और भजन कर रहा हो उसको मन ही मन आदर करो, मन से आदर करना माने क्या, ऊपर से प्रणाम किया और आदर मन से नहीं रखा तो इसमें क्या क्या रहा, ऐसा नहीं, मन से आदर करो, हमारा ये गोष्ठी का है। और निंदादि सुन्न संबंध ज्ञान युक्त रहे प्रणत भीष्य मनसाद्रिय प्रणति इत्यादि के द्वारा और साथ साथ में मन के द्वारा आदर करो, और इसके बाद में वो सब ठीक। इसमें विचारों की विभिन्नता ये रही, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा जे एक बार कृष्ण नाम है, और कुछ लोगों ने कहा जे प्रभुपाद जी तो कहते हैं दीक्षा चेत, इसलिए हमारे समस्त आचार्यों ने कहा, रूप गोस्वामी ने भी कहा और दूसरी जगह भी कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने और सब ऐसा कहा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार ठीक जान पड़ा, इसलिए हम लोगों को उन्हीं का विचार लेना। और कुछ लोग करे जब प्रभुपाद जी ने लिखा ऐसा, इस पर चल रहा था, इतने में गुरु महाराज जी गए, गुरु जी महाराज जी के सामने यही विचार आया, गुरु महाराज जी ने कहा जो भक्ति विनोद ठाकुर को आपने कैसे जाना जो ये महापुरुष है, रूप गोस्वामी को आपने कहाँ से पहचाना, आपके गुरु जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं तो पहचाना है, वो यदि नहीं रहते मीडियम आप लोग नहीं जान सकते थे, आपकी आंख तो उन्होंने खोली, तो जिन्होंने आंख खोली हमारी उसको छोड़ करके और डायरेक्ट वहां पर हम जाएंगे उनको समझने के लिए तो गलत हो। भक्ति विनोद ठाकुर का ये एक्सप्लेनेशन क्या उन्होंने नहीं सुना था, प्रभुपाद जी ने जरूर सुना था, उन्होंने ही तो उपदेशामृत की पुस्तक को प्रकाश किया भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए मेरा विचार यह है कि हम जो जो कुछ भी देखेंगे प्रभुपाद की आंख के माध्यम से हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे तो प्रभुपाद जी के कथाओं के माध्यम से उस चीज को समझने की चेष्टा करें, अलग रूप में नहीं। आया समझ में, जो कुछ हम विचार करेंगे प्रभुपाद जो करें वो ठीक करें और उन्हीं का अनुसरण करके हम चलेंगे, ये गुरु निष्ठा है। अंत में सब लोगों ने गुरु जी की बात मानी। इसी तरह से और भी बहुत से विचारों को हमने देखा है। गुरु महाराज जी की ऐसी पक्की निष्ठा थी, गुरु प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही ठीक है। प्रभुपाद भी साधारण तो आचार्य थे नहीं, मुक्त कुल उपास्य थे, एकदम जगत को उन्होंने पलट दिया, ऐसे ही आचार्य थे। इसलिए गुरु महाराज जी की ऐसी ही निष्ठा थी। यदि प्रभुपाद के विरुद्ध में एक कलम किसी ने लिखा, गौड़ीय वैष्णव के विरुद्ध में लिखा, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी साथ ही साथ में उसका प्रतिवाद करते थे। बहुत बार हमने देखा है, यही हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे मुक्त महापुरुषों के संपर्क में हम लोग, और उन्हीं की कृपा से उस समय में गौड़ीय मठ के जितने भी धुरंधर लोग थे, कोचार श्रीधर महाराज जी भी, गुरु महाराज जी का प्रकट होने के बाद भी मैं उनसे गया हूँ, मिला, बहुत ही सुंदर हरि कथा इत्यादि परिवेशन करते थे। मैं कभी कभी लोक से जाता था गुरु महाराज जी के अप्रकट के बाद, अन्य तो उनके साथ में जाया करता था। श्रौती महाराज पूज्य बात, उनमें से तुम लोगों ने भी किसी ने देखा है, सिद्ध महाराज तो थे ही, वन महाराज पूज्य पाठ थे, भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी थे, माधव महाराज जी थे, भक्ति नेमी महाराज थे, सिद्धांती महाराज जी थे, अद्भुत अद्भुत धुरंधर। हम लोग का सुयोग हुआ ये सब देखने का और सुनने का, इसलिए हम लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में सहजी घबराते नहीं। आप लोग भी उनके उपदेशों को सुन करके अपने को ऐसा बनाएंगे, जितना भी कलिकाल कोई भी विरोधी वातावरण पैदा करने पर भी हम ठीक रहेंगे अपने गुरु वैष्णव के विचार से, घबरा नहीं जाएंगे, ऐसा रहना चाहिए। जिस समय में वो बाग बाजार को छोड़ करके आए प्रभुपाद जी का मठ को, मैंने कभी छोड़ा नहीं ऊपर से, तो उस समय में पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं, और बहुत से वैष्णव उनके साथ में थे 40-50, अकेले नहीं रहते थे, सांगठनिक शक्ति उनमें अद्भुत थी बचपन से ही, बहुत ही कड़े सिंह जैसे लगते थे किंतु भीतर से बड़े कोमल। विशेष करके अंतिम समय में बहुत कोमल हो गए, बहुत कोमल। पहले इनकी इतनी रास भारी थी, रास मैंने तेजस्वी वो थे, बड़े बड़े महाराज लोग भी उनके समीप में नहीं जा सकते, और हम लोग कुछ यही नहीं, जट उनके चले गए, उनकी सेवा की, रसोई बनाया, कपड़े भेजे, उनके सब कुछ किया, उनके खाट पर पलंग पर बैठ करके चरण भी दबाया, और सब समय तर्क वितर्क लगे रहते थे, हम लोगों पर कभी भी असंतुष्ट नहीं, हंसते हुए समस्त प्रश्नों का उत्तर देते थे, काम में लगाते थे। मैंने कभी उनकी विचार का आज्ञा का कभी विचार नहीं किया, कोई आदेश दिया ये ठीक है कि गलत है, ये क्या है, हमने कभी विचार ही नहीं किया, इतना पक्का उनके ऊपर में भरोसा था, श्रद्धा थी। कहा और बस मैं कूद गया, जिस अवस्था में उसी अवस्था में, यहाँ तक कि आदेश दिया हमने समझा नहीं, और दौड़ गया जो क्या करना है, पीछे सोचा जाए क्या करने के लिए भेजा। तो बिकम महाराज जी बोल, भाई इसलिए भेजा, मैंने आपने आज मेरी रक्षा की। गुरु महाराज जी जानते थे इस सब विषय, और तो बिकम महाराज क्या था, गुरु महाराज से रोज लड़ाई हो जाती, लड़ाई मैंने वैसे ही बात भी टंडा हो, गुरु महाराज जी ये काम करना है, कैसे होगा कैसे होगा, ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, यदि वो आदमी नहीं मिला तो, यदि ऐसा हो गया तो, तरह तरह से, किंतु जानते थे गुरु महाराज ये काम लेगा तो ये कर देगा, और हम लोग अभी शिशु थे ना, इसलिए हम लोगों पर उनका विश्वास, जाएगा करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए तो बिकम महाराज इत्यादि को कोई काम दे देते, बावन महाराज जी को, बावन महाराज जी चुपचाप सरल सीधे, वो भी हमारे जैसे विचार नहीं करते थे, बड़े गंभीर रहते थे, बोलते कम थे, अभी भी बोलते कम है। तो बिकम महाराज जी वैसे ही थे, लग जाता कहे वेदांत हमको सुनाइए तो पढ़ लो जा करके। दो चार बार कहेंगे जी हमको कुछ बतला दीजिए और चुपचाप बैठ जाते, कहे जाओ पढ़ लो, अंत में उन्हीं के सामने कहते ये पुस्तक रहा हम चल हम लोगों के लिए ऐसा कभी थोड़ा सा जिसमें विद्या का अभिमान कुछ हो सकता है, हमने त्रिविक्रमराज को मैं नहीं कहता, वो गुरु महाराज जी सोचते थे ये जान बूझ करके या क्यों उनकी ऐसा
बता रहे थे, बोले
मैं हमको भी कहते हैं आप उनके साथ में तर्क वितर्क करके सब आपको बतलाया, हम लोगों को नहीं बतलाया, उनसे बहुत पीछे में आए, बाण महाराज जी सबसे पहले आए, शायद 10-12 वर्ष की उम्र में आ गए उनकी मैया ने, त्रिविक्रम महाराज हमसे बहुत पहले आए, इसके बाद में मैं सबसे पीछे आया, उनको भी देखने वाले में शेष आई यहाँ है, और मंगल महाराज जी को उन्होंने दीक्षा दी थी, हाँ कालाचंद प्रभु
रंगनाथ
वो भी है काकभूषुंडी, बहुत पहले का है, ये हम लोग चार आदमी और कौन, और कोई नहीं, यही चार आदमी हम, मैं
उमा दीदी भी देखा, उमा दीदी देखी थी,
छोटी सी लड़की थी, कॉलेज के स्टूडेंट थी, बड़ी तेज थी, बड़ी सुंदर सुखांत उस समय में थी, गुरु महाराज जी इसको स्नेह करना चाहते, गले में माला देना चाहते, किंतु वो अभी नाराज थी, उसकी मैया इसको ले आती थी, किंतु गुरु महाराज जी ने उसी समय इसको ग्रहण कर लिया, बड़ी सौभाग्यवती है, उन्हीं की कृपा से आज मठ में रह रही है ब्रह्मचारी लोग जैसे, और बड़ी विदुषी है पढ़ने लिखने और ये सब सिद्धांत इत्यादि के विचार में भी, यही कुछ लोग हम लोग हैं, पुराने आदमी सब चले जा रहे हैं, एक आश्रम महाराज थे, गुरु महाराज जी ने जब आरंभ किया सुखानंद एक उनकी चरण सेवा की, गुरु महाराज जी का ये किया प्राकृतिक चिकित्सा, उनके चरण दबाए उनकी सेवा की, एक ये यही कुछ लोग, धीरे 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 हम लोग कमते चले जा रहे हैं, गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रिय थे सत्य विग्रह प्रभु, उनको मैंने देखा है करीब करीब 25-26 या नहीं और थोड़ा सा उम्र पर 25-30 वर्ष की उम्र में 32 वर्ष, बहुत ही सुंदर लड़के सत्य विग्रह जी, अब वो आश्रम महाराज हो गए थे, अब तो 80 वर्ष के करीब उम्र थी, अभी उन अप्रकट हो गए, मोनीमान प्रभु और सत्य विग्रह प्रभु अभी कल परसों गए,
6 तारीख
को या 5 तारीख को, वो इतना सुंदर मृदंग बजाते एक एक बलपत्रंग करके, अब 10 हाथ उधर में चले जाते फूल के साथ में मृदंग कर जाते, ऐसा सुंदर नहीं, अब मोहिनी प्रभु वैसे थे, वो तो कीर्तन सम्राट थे, इन्हीं दोनों को घर से ले आए, गृहस्थ ये लोग थे, और उन्हीं लोगों को अपना दाया बाया स्तंभ करके मेदिनीपुर और कहां कहां सारे बंगाल में, उसमें इन लोगों का सुरीला कंठ ऐसा था जो अद्भुत, कीर्तन करते थे नव ब्रजमंडल परिक्रमा में, आंखों में सबके आंसू छा जाते, सब लोग रोने लगते, ऐसा सुंदर कीर्तन कर, आज कुछ दिन हुआ, 4-5 दिन हुआ,
5 तारीख
अप्रकट हो गया, अब धीरे धीरे उनके जितने गण हैं प्रभुपाद के गणों में से अब केवल वही हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में थे, अब दूसरा कोई अब नहीं रहा, सब धीरे धीरे अब हम लोगों का भी धीरे धीरे जगत से चल रहे हैं, हमारे गुरु भाई लोग भी अभी कुछ है धर्म का, न जाने पीछे क्या होगा ये सब, इसलिए उन्हीं की शिक्षाओं को लेकर के वैसा ही गुरु निष्ठा होनी चाहिए, जहां भी रहेंगे गुरु निष्ठा के साथ में जीवित रहेंगे, ऐसा ही आदर्श चरित्र, उनकी सेवा के लिए प्राण समर्पण कर देंगे, हमको तो याद नहीं है मैं बिना गुरु जी के आदेश से कहीं भी 1 सेकंड के लिए कहीं बाहर गया, कभी नहीं, या बाण महाराज जी को या तो विक्रम महाराज जी को जब तक वो थे या अभी तक मुझ में ऐसा रहता है, 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं, भक्ति ऐसी आसान चीज नहीं है जो उतर आएगी कम से होगा, इसलिए
जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका उनकी सेवा की
सतत कोई चीज नहीं है। प्रहलाद महाराज जी के वंश में विरोचन आया तो विरोचन को हम ही गुरु पुत्र मानेंगे? ऐसा नहीं, गुण का आदर होना चाहिए। यदि किसी गोस्वामी के वंश में कोई लड़का हो और भजन नहीं करता, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसको गोस्वामी मान करके ये राधारमण जी के गोस्वामी हैं, ये मदन मोहन जी के गोस्वामी हैं, और चाहे वो धर्म से विपरीत करें, नहीं, गुण का यथार्थ आदर होना चाहिए। किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति यदि भगवत भक्ति करता है तो वही समाज में सबसे उन्नत है, उसको आदर करना चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं है वो जितना ही पढ़ा लिखा जो कुछ भी हो, भक्ति के लिए आदर नहीं। गुरु जी का भी ऐसा ही विचार था, तो उन्होंने उसी स्थान में जहाँ पर प्रभुपाद का आक्रमण हुआ था, प्रभुपाद जी की इच्छा के लिए वहीं पर बीच में शहर में एक विशाल मंदिर किया, वही गौड़ीय देवानंद गौड़ीय मठ। उन्होंने कहा कि ये मायापुर नहीं है प्राचीन, ये क्या है, पुराण कोलद्वीप है। प्रभुपाद के समय में ये सब करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, गुरु महाराज जी के समय भी नहीं था, किंतु उन्होंने सब चीजों को स्थापित किया। आज सब लोग जानते हैं कि ये कोलद्वीप नवद्वीप है और उस पार में मायापुर है। इस तरह से गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी के बाद में, यदि वो नहीं आते तो हमारा ये सब कुछ चौपट हो जाता। आज उन्हीं के देखा देखी सब फिर वैष्णव लोग फिर प्रचार में लग गए, भजन करने लगे, नहीं तो ये ब्रह्मचारी सन्यासी लोग गृहस्थ बनने लग गए अधिकांश। इन्होंने ही सबको रोक करके और फिर से इन लोगों को भोजन भक्ति में लगाया। आज उन्हीं की कृपा से ये केशव जी गौड़ीय मठ स्थापित हुआ, वृंदावन में भी हो रहा और सब जगह भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचार हो रहे हैं। अभी गुरु महाराज जी ने जिनको संन्यास दिया वो प्रभुपाद जी के शिष्य पाश्चात्य देशों में जाकर के कुछ दिनों में ही समस्त विश्व में गौड़ीय धर्म का प्रचार किया। ये इन्हीं महापुरुषों का शक्ति है। अभी कलाचंद ब्रह्मचारी जी अपना दो एक स्मरण करके गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र का और दो एक बातें कह करके पुष्पांजलि देंगे। इसके बाद में मंगल महाराज जी शेष साहित्य